परमहंस वैभ जगचाय डिवाइन बैचलर अभय चंद्रवन भक्ति रंग स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री प्रभुपाद की जय ओम श्रीपाद डिवाइन बैचलर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की श्री श्री गौणिताय की श्री श्री कृष्ण बालराम की राधा श्याम सुंदर लाल विशाल की श्री प्रभुपाद समाधि मंदिर की श्याम की दुनिया क्या की ट्रांसनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल ग्लोरी श्री सिंबल बोरी ऑल ग्लोरी श्री सिंबल बोरी ऑल ग्लोरी श्री सिंबल बोरी ऑल ग्लोरी श्री गुरु श्री गुरु हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चौदह स्कंद चौदह अध्याय श्लोक नंबर 20 तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यं जगतं ईश्वरेश्वरे लोका सपाला इतस्मै हरन्ति बालं अद्रतः तस्मिं तुष्टे किम् अप्राप्यं जगतम ईश्वरेश्वरे लोका सपाला एतस्मी हन्ति बलिम अद्रतः तस्मिं तुष्टे किम् अप्राप्यं जगतम ईश्वरेश्वरे लोका सपाला एतस्मै बलिम अद्रता तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यं जगतम् ईश्वरेश्वरे लोकास्पाला एतस्मै हरन्ति बलिम अद्रता
Thank you.
that is. Shabdas. Is anyone translating for the Russian devotees? Or can they listen? See, I'm always not special. Who's translating? Oh, Jagat Guru. Okay, okay. Louder? Okay.
शब्दार्थ तस्मिन् जब वह तुष्टे संतुष्ट या प्रसन्न है किम क्या अप्राप्यम प्राप्त करना असंभव जगताम विश्व के ईश्वर ईश्वरे नियंता के भी नियंता लोका लोकों के स्वामी सपाला पालकों सहित ये इस प्रकार से एतस्मयी उसको हरन्ति प्रदान करते हैं बलिम पूजा की सामग्री आद्रता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता इसलिए सभी देवता लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करते हैं और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तात्पर्य इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है समस्त जीवात्माओं को चाहे वे इस लोक के हों या अन्य लोकों के अपने कर्तव्यों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं वेदों में भी कहा गया है एको बहुनाम यो विद धातु कामान कठोपनिषद 2:2-13 वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु पक्षी तथा मधुमक्खियों के पास कोई व्यवसाय या काम धंधा नहीं होता तो भी भोजन के अभाव में वे मरते नहीं वे प्राकृतिक ढंग से जीवित हैं और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं तथा भोजन निद्रा मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध है किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप से एक नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है यहां तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं फलतः आधुनिक सभ्य मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है वे भौतिकतावादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी के दास बन जाते हैं दरअसल उनके नेता उन्हें इस पद पर चलने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरी नियमों से अनजान रहने के कारण अपने अंधे नेताओं का अनुसरण करके दुख की राह पर चले जाते हैं विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह देखे कि लोग भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं। यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं को हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। हरे कृष्ण। अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
ओम ज्ञान श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तस्मिन् तुष्टे किम् अप्राप्यम् जगतां ईश्वरेश्वरे लोका सफला यतस्मि हरन्ति बलिम् अद्रुतः। तो आप इस अध्याय में महाराज वेना की कथा पढ़ रहे हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि प्राचीन समय में एक ही वेना था। प्राचीन समय में एक ही वेना था, पर आज के वातावरण में हजारों वेना है। लगभग हर कोने में वेना के समान व्यक्ति है। तो महाराज वेना राजा बने थे क्योंकि राजा की आवश्यकता है शासन करने के लिए। पर ब्राह्मणों ने देखा कि ये राजा प्रजा की कुछ चिंता नहीं करता, लगभग भगवान का शत्रु है। और ब्राह्मणों ने देखा कि राजा भक्ति का वातावरण अनुकूल करने में सहयोग नहीं दे रहा। हमारे शास्त्रों के अनुसार समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रम में होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्हें कहा जाता है चार आश्रम। और ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्रह्मचारी की समान संन्यास, इन्हें कहा जाता है आश्रम। तो ब्राह्मणों का होना समाज में आवश्यक है। जैसे प्रभुपाद जी ने अनेक समय समझाया है, ब्राह्मणों की तुलना की जाती है शरीर के सिर के साथ। तो प्राचीन समय में समाज में ब्राह्मण होते थे। इन ब्राह्मणों में बिल्कुल लालच की भावना नहीं थी। जैसे आप पढ़ते हो राम राज्य के समय भगवान राम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर कहा, मांगो मेरे से जितनी जमीन चाहिए तुम्हें उतनी मैं देने को तैयार हूं। ब्राह्मणों ने कहा, हमें हमारे हृदय को आप जीत चुके हो, हमें उतना ही स्थान दो जितना कि आवश्यक हो। भगवान राम और सीता ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को भेंट के रूप में दे दी थी। सीता ने केवल एक नथनी रखी थी नाक के लिए और ब्राह्मणों ने सब स्वीकार किया और फिर सब सोना लौटा दिया राजा को। यह था ब्राह्मणों का भाव। तो जब हम शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ है शुद्ध ब्राह्मण जो कि भक्ति के लक्षणों को अनुकूल कर रहे हैं। भगवद्गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के गुण के विषय में, समो दम तप सोच शांति राज ज्ञान विज्ञान अस्त्य ज्ञान ब्रह्म कर्म स्वाखर। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये राजा अपने आप को भगवान के समान स्वीकार करता है। राजा ने देखा कि राजा ने प्रजा ने ब्राह्मणों ने देखा कि राजा ने हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं तीन चीजों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्या है वो? यज्ञ, दाना और तपस्या। यज्ञ का अर्थ है भगवत प्राप्ति का साधन, दाना दान और अनेक प्रकार के दानों में सबसे ऊंचा दान क्या है? ज्ञान का दान और तपस्या। और भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें भी इतनी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहां वेना ने सारे यज्ञ रुकवा दिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है जल के कारण, जल की प्राप्ति होती है जब आप समाज में यज्ञ का पालन करोगे। जब आप समाज में यज्ञ नहीं करोगे तो प्रगति आपको साथ नहीं देगी। आखिर प्रगति किसके निर्देशन में चलती है? किसके? भगवान के। माया दक्षिण प्रगति स्वीत से चल चल। तो आज आप देख रहे हो समाज में अनेक आवश्यकताएं कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हम समाज में यज्ञ नहीं कर रहे। तो ब्राह्मणों को पता था किसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। ब्राह्मणों ने पूरा प्रयास किया राजा को ठीक उपदेश देने के लिए, पर राजा के मन में इतना अहंकार था, इतना क्रोध था कि राजा ने ब्राह्मणों को कहा तुम सब तो वैश्य हो, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं और मुझे स्वामी स्वीकार करने की बजाय तुम किसी और को स्वामी स्वीकार कर रहे हो। तो फिर ब्राह्मणों के पास कोई उपाय नहीं था उनको श्राप देना। तो आज के इस श्लोक में जो ब्राह्मण हैं वो हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो परम भगवान है, जो परम भगवान है वो नियंता, जो उनको हम प्रसन्न कैसे करें? परम भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वर। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता, परम भगवान असली भोक्ता है। बहुत एक समाज में हम सोचते हैं हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है, पर असली भोक्ता कौन है? केवल भगवान है। ये है भक्त का ज्ञान कि असली भोक्ता है परम भगवान। तो जो ब्राह्मण हैं वो हमें उपदेश दे रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ये जो श्लोक का उपदेश है ये है सारे वैदिक शास्त्रों का सार। सारे वैदिक शास्त्रों का उपदेश क्या है? वेदेश सर्वेण अहमेव वेदेयो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। भगवान गीता में कहते हैं सारे वेदों द्वारा मैं ही पहचाना जाता हूं क्योंकि मैं हूं हर चीज का कारण। तो यहां देव ब्राह्मण उपदेश दे रहे हैं कि परम भगवान जो हैं उनकी उपासना सारे देवता भी कर रहे हैं, सारे देवता समझते हैं कि परम भगवान है असली नियंता कंट्रोलर। कई व्यक्ति अज्ञानता के कारण सोचते हैं सब भगवान एक ही हैं, जिस मार्ग पर चलना है चलो, प्रशासन में क्या है निर्णय। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब हृतया, एक ही ईश्वर है, बाकी सब क्या है उनके सेवक। ईश्वरा पारमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अदानंद आंदिर गोविंद सर्वखंड। अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है। तो ये सोचना कि सारे भगवान एक समान हैं, किसी मार्ग पर भी चलो एक ही परिणाम होगा, ये गलत है। इसलिए दस नाम अपराधों में दूसरा नाम अपराध क्या है कौन बताएगा? श्री ब्रह्मा जी को देवता के समान। तो जो देवता हैं वो परम भगवान के अधीन है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो कम बुद्धि के व्यक्ति है वो देवताओं की उपासना करते हैं इस इच्छा के साथ कि हमें भौतिक लाभ प्राप्त होगा, वो जो बुद्धिमान है वो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है भागवतम के चौथे स्कंध में, जिस प्रकार अगर आप पेड़ के पौधे में पानी डालते हो तो उसका प्रभाव असर पूरे पेड़ में पहुंच जाता है कि नहीं। अगर आपको जो भूख लगती है आप केवल एक ही स्थान में भोजन डालते हो पेट में, पूरे शरीर में तंदुरुस्ती आ जाती है। उसी प्रकार परम भगवान की उपासना के द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियां हैं उनके प्रति भी जो आभार है उसे हम चुकाते हैं। तो ब्राह्मण ये उपदेश दे रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना हम सब करते हैं, और जब भगवान संतुष्ट हैं तो हर चीज प्राप्त हो जाएगी। बौद्धिक समाज में हम एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, सच झूठ हम प्रयास कर, अब नौकरी कर रहे हो अब प्रयास करते हो अपने सेठ को खुश करने के लिए। हाँ आपका रिश्ता है एक दूसरे के साथ, पति पत्नी माँ बाप, हम प्रयास करते हैं एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। पर अंत में क्या सुनने में आता है आप ये क्या देखते हो कि हम किसी चाहे कितना भी प्रयास करो दूसरा व्यक्ति यही कहेगा तुमने क्या किया मेरे लिए, सच है झूठ। यह है भौतिक जीवन का लक्ष्य, आप कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो परम भगवान इतने दयालु हैं अगर आप थोड़ी तुच्छ सेवा भी करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां कहा गया है यहां हमें प्रभु यहां हमें यह उपदेश दिया जा रहा है कि अगर परम भगवान संतुष्ट हैं तो हर प्रकार की आवश्यकता भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये है वैदिक शास्त्रों का निर्णय कि हमें प्रयास करना चाहिए परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए, ये होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य और भाव। एक दूसरे को प्रसन्न करने के बजाय हमारा प्रभाव होना चाहिए कि हम परम भगवान को संतुष्ट करें, और अगर परम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हमारी सब जिम्मेदारियां को हम निभा रहे हैं। कई बार लोग क्या सोचते हैं अगर हम केवल कृष्णा भक्ति करेंगे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे तो हमारे से निराश नहीं हो जाएंगे। पर देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम परम भगवान की सेवा में हैं। तो देवता स्वयं भगवान की उपासना करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंध में आप पढ़ते हो कि शिव जी ने एक भक्त को वर दिया था जहां वो हाथ रखेगा उसके नीचे हर चीज फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे सूर ने वर तो प्राप्त कर लिया, जैसे ही वर प्राप्त किया अपना हाथ फैलाने लगा किसके ऊपर, और अंत में शिव जी दौड़े, जहां भागे उनके पीछे ये असुर सूरा भी था। अंत में उनकी सुरक्षा कैसे हुई, परम भगवान द्वारा। इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे क्योंकि भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने सालाना इंद्र यज्ञ रोक दिया था, और इंद्र ने उसके बदले में तेजी के साथ वर्षा भेजी, और भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को छाता के रूप में उठाया भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो इंद्र ने भी स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। ब्रह्मा जी प्रसिद्ध देवता भगवान के ग्वालों को, बछड़ों को, गायों को चुरा लिया था, छुपा लिया। भगवान ने सरलता से अपना विस्तार किया और इन बछड़ों, गाय और ग्वालों के रूप में उपस्थित हो गए। तो परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। हम सबका ये भाव होना चाहिए, हम हमारे कार्य से भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए क्या कहा, भगवान के शरणागत होने के क्या आवश्यकता है। पहली आवश्यकता यह है जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसी कार्य को स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस कार्य को त्यागो। तो भक्ति के लिए अनुकूल है का अर्थ है उस कार्य का पालन करो जिसके द्वारा आप परम भगवान को प्रसन्न कर सको। तो हम भौतिक संसार में सदा प्रयास करते हैं एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए, पर भक्त का भाव ये रहता है कि अगर मैं परम भगवान को प्रसन्न करना कर सकता हूँ, अगर मैं उन्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जब परम भगवान संतुष्ट हैं तो कोई कार्य असंभव नहीं रहता। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति नहीं चलना नहीं पहाड़ों के पार जा सकता है। पहाड़ों के पार जाना चलने से ज्यादा कठिन है, और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है, सरल कार्य कठिन हो जाता है। तो हम सबके हृदय में ये भाव बैठ जाना चाहिए कि अगर हम परम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वो है जीवन की पूर्णता, वो है जीवन की सफलता। और हमें इंद्रियों को अगर संतुष्ट करने जाएंगे तो कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। परसों हम पंजाबी भाग मंदिर में लेक्चर दे रहे थे जहां की प्रहलाद महाराज का श्लोक था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप पे और मेरा यही रिश्ता है कि आप सदा मेरे स्वामी रहोगे, मैं सदा आपका सेवक रहूंगा, और अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा न हो, क्योंकि जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी, जब तक आप भौतिक कार्य में रहोगे, आप जुड़े रहोगे किस संसार में, जन्म मृत्यु के बंधन में। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान भक्त है, उसकी ये इच्छा रहती है कि हर प्रकार के भौतिक इच्छा से मिला रहे। तो ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जब भगवान संतुष्ट हैं तो आप हर चीज की आवश्यकता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कार्य भी ऐसा बने तो आप कहोगे हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, अब इसके बदले में मुझे केवल धन चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए स्थान रहने के लिए, ये प्राप्त होगा। तो यहां ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, कुछ भी कार्य असंभव नहीं, पर अगर भगवान को ये लगे कि अगर हम आप इस भक्त को ये सुविधा देंगे वो माया में गिर जाएगा, ये भगवान नहीं भी देते, क्योंकि भगवान को पता है हम कितना सह सकते हैं और किस प्रकार, क्योंकि भगवान की क्या इच्छा है कि हम भौतिक वातावरण से बचे। आगे जो देवता हैं, अन्य लोगों के देवता हैं, वो सब हर प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं परम भगवान की सेवा के लिए। तो ये सोचना कि पहले आगे तो ये सोचना कि अगर देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजा में अंतर नहीं, ये गलत भाव है। तात्पर्य में प्रभा जी क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में प्रभा जी कह रहे हैं कि यह है वैदिक शास्त्रों का निर्णय। आखिर गीता में क्या है, गीता है में है शास्त्रों का सार। कुछ दिन पहले आपने गीता जयंती उत्सव मनाया था, तो गीता का क्या है उपदेश, निचोड़ क्या है गीता का, गीता का संदेश दो श्लोकों में प्राप्त है। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेव, हम तर्म सर्व पापे भय मोक्ष में मत, सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो आप पूछोगे अगर मैं भगवान की शरण में आऊंगा तो उसके बदले में मुझे क्या लाभ मिलेगा, भगवान क्या कहते हैं, क्या लाभ मिलेगा, अमेरिका के टिकट, क्या लाभ मिलेगा, भगवान आपको सब पापों से मुक्त कर देंगे और अपने धाम ले जाएंगे। भगवान के धाम का नाम क्या है, जहां के किसी प्रकार का क्लेश नहीं, वैकुंठ था। और ये जो भौतिक स्थान है इसका नाम क्या है, कुंत जगत, जहां की क्लेश क्लेश। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि असली उद्देश्य हम सबका है भगवान की सेवा में जुड़ना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कथा उपनिषद के उस प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग कर रहे हैं, नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम एको भवनाम विदाति काम। हम नित्य हैं और परम भगवान भी नित्य हैं, सच बात। पर अंतर क्या है, कुछ अंतर है कि हम एक ही हैं, अंतर है या नहीं, क्या है अंतर, वो एक नित्य सब नित्यों की देखभाल कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो पशु हैं उनके पास कोई शिक्षा नहीं, कोई नौकरी नहीं, जब भी उनकी देखभाल हो रही है तो परम भगवान जो है सबकी देखभाल करते हैं। पर ये जो मानव देह प्राप्त हुआ है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, किसलिए, कृष्ण भक्ति के लिए। तो ये अज्ञानता हमने समाज में दूर करनी है। हम लोग एक मंत्र को उच्चारण करते हैं बोलने से पहले, ओम ज्ञान तिविरदस्य ज्ञानांजना शलक्य चक्षुर मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सबका जन्म होता अज्ञानता में, पर गुरु साधु की कृपा से ये ज्ञानता दूर हुई है। जैसे अंधेरापन, अंधेरापन दूर कैसे होता है, आपके वृंदावन में बिजली जाते रहती है ना, तो जब बिजली जाती है तो क्या होता है, अंधेरापन। अगर जनरेटर है तो बिजली तुरंत आ जाती है, नहीं तो आपको कई घंटे राह देखनी पड़ती है। तो अंधेरापन दूर कैसे होता है? रोशनी के साथ। तो अज्ञानता दूर होती है ज्ञान के साथ। इसीलिए जो वैष्णव भक्त हैं उनका क्या भाव रहता है? उनका भाव रहता है भगवान का संदेश आगे पहुंचाया जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस संस्था का मूल उद्देश्य यह है कि पूरे मानव समाज को ये ज्ञान दिया जाए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, जो एक साल में रहकर भजन करता है, जो मेरा और उससे ज्यादा प्रिय तक हुआ है ना। तो आप ऐसे कितने भक्त भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? सब। तो कई बार भक्त पूछते हैं, आपकी संस्था में भक्ति के रास्ते में कोई छोटा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट? हमें बौद्धिक समाज में आदत है हर चीज में छूट मांगने के लिए। आप बाजार जाते हो, सब्जी का भाव पूछते हो, वो कहते हैं 10 रुपए किलो, आप कहोगे 5 रुपए। तो कई बार लोग पूछते हैं, भक्ति के मार्ग में कोई छूट नहीं है? छूट नहीं है, पर एक शॉर्टकट है कि आप प्रचार करो। और क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जो प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो इसलिए वैष्णव के विषय में कहा गया है, परा दुखा दुखी। वैष्णव जो है जब देखता है भौतिकवादी व्यक्ति जुड़े हुए हैं भौतिक कार्य में, तो प्रयास करता है उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए। हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया। यहां हमने आपको गीता का सुनाया, यहां की भगवान कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय है जो प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी भाव को आगे प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? जाने तक देखो, जाने देखो चाहेगा कृष्ण उपदेश, जिसे भी तुम मिलो कृष्ण को उपदेश दो। तो आप कहोगे, स्वामी जी ये तो बड़ा एहसान है, हम लोही बाजार जाते हैं, इसे भी मिलेंगे कृष्ण को उपदेश देंगे। पर प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा है, आप किसी को कुछ उपदेश दोगे सुनाओगे, वो सुनेगा और आपका संदेश भूल जाएगा। पर अगर आप किसी के हाथ में ग्रंथ दोगे तो क्या अंतर है? कौन बताएगा क्या अंतर है? राधे श्याम,
वो हमेशा पढ़ता रहेगा। तो
हम सड़क में खड़े होकर सबको बोलेंगे कृष्णा सुप्रीम चैन हरे कृष्णा। हाँ, तो क्या अंतर है?
ग्रंथ रहेगा तो उसे हमेशा याद रहेगा, पढ़ेगा तो हमें भक्त बनेगा। हम तो थोड़े समय में कुछ थोड़ा ही बता पाएंगे, लेकिन ग्रंथ पढ़ेगा तो बहुत कुछ।
और जो बताओगे अच्छी संभावना है वो भूल भी जाए। कलियुग में हमारी याददाश्त कितनी कमजोर है, हर चीज लिखना पड़ता है ना, और लिखकर भी हम भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बल दिया। कुछ दिन पहले हम भक्तों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि मनाई थी। हमने मनाई थी यहाँ बाकी आविर्भाव और तिरुभाव। जब ये शुभ दिन आते हैं तो हमें इन महान संतों की लीलाओं को सुनने में आनंद आता है, क्योंकि इन शुभ दिनों पर हम इन महान संतों का गुणगान करते हैं और उनके जो कार्य है उन पर विचार करते हैं, सुनते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुरू से ही नित्य मुक्त भक्त है। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी, हे भगवान आपको ऐसे शुद्ध भक्त को भेजिए जो इस आंदोलन को आगे चला सके। और भक्ति सिद्धार्थ जी प्रकट हुए थे, तो भक्ति सिद्धार्थ जी प्रभुपाद जी से मिले थे राधा कुंड में, जहां प्रभुपाद जी उस समय भक्ति सिद्धार्थ जी हजारों शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उन्हें मिलने गए थे राधा कुंड में, और भक्ति सिद्धार्थ जी ने एक तस्वीर खींची मृदंगा की और कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को अनुवाद करना और उन्हें प्रकाशित करना। और ये जो सेवा है इसको क्या नाम दिया? बृहद मृदंगा। बृहद मतलब सबसे बड़ा, मृदंगा साधारण मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक ही जाती है, पर ग्रंथों का आप किसको वृंदावन में बांटते हो। आपके वृंदावन मंदिर में सारे विश्व के लोग आते हैं, ब्रिजवासी आते हैं, भारतीय लोग आते हैं, पर सारे विश्व के। और कम से कम अंदाजे से 50% या 60-70-80-90% लोग जो आते हैं वृंदावन मंदिर में, वृंदावन में निवास नहीं करते। कहते हैं वृंदावन में नहीं, कोई दिल्ली में, कोई आगरा में, कोई मेरठ में, कोई किसी और शहर में। सच बात है। तो जब मान लो कोई लंदन से आ रहा है, आप उसको ग्रंथ दोगे, वो एक ग्रंथ को कहां ले जाएगा? वहां जाकर पढ़ेगा। मान लो कोई अफ्रीका से आ रहा है, आप ग्रंथ दोगे, वो अफ्रीका में जाके पढ़ेगा। हमारे भक्त गए थे प्रचार करने अफ्रीका में, एक देश था नाइजीरिया, उस समय इसको उनका कोई मंदिर नहीं था नाइजीरिया में, पर हमारे आए 3-4 अमेरिकन भक्त गए थे प्रचार करने वहां। तो एक दिन जब वो ग्रंथ बांट रहे थे सड़क में, और इसको उनका मंदिर खुला भी नहीं था, ये कोई 25 साल पुरानी कहानी है, तो 30 साल, तो एक अफ्रीकन लड़का आया, कहने लगा मुझे पता है, आई नो व्हाट यू आर प्रीचिंग, मुझे पता है आप क्या दे रहे हो उपदेश। तो हमारे भक्त ने पूछा कैसे, हम तो बिल्कुल नए आए हैं तुम्हारे देश में। उसने कहा नहीं, मैं इंग्लैंड गया था, वहां मैंने तुम्हारी 2 किताबें खरीदी, और यहां आकर मैंने वो किताबें मेरे मित्रों को बांटी, और सब पढ़ रहे हैं और सब हरे कृष्ण बोल रहे हैं। तो मंदिर खुलने से पहले ग्रंथ वहां पहुंच गए थे, ग्रंथ के प्रभाव से लोगों ने हरि नाम का उच्चारण शुरू कर दिया था। तो आप जब ग्रंथ बांटते हो, आपके वृंदावन मंदिर में, वृंदावन शहर में अच्छी संभावना है कि ये ग्रंथ का अध्ययन होगा कहां? दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन, न्यूयॉर्क, विश्व के किसी कोने में। और लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसके द्वारा क्या आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। आज लोग अत्यंत दुखी है, बौद्धिक समाज में चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, आप असली सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मछली को अगर जल के बाहर ले जाया जाए, मछली जी पाएगी? तो आध्यात्मिकता के बिना असली सुख असंभव है। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये लाभदारी है, क्योंकि परम भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त बाहर जा रहा है प्रचार करने के लिए, आप लोग तो भारत में प्रचार कर रहे हो, और भारत में भी वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में लगभग सब लोग जो आते हैं दर्शन के लिए मंदिर का, उनमें कोई धार्मिक रुचि है ना, तो लोग वृंदावन आते ही नहीं। दूसरे शहरों में, बॉम्बे दिल्ली वगैरह में, तो आप कई लोगों को मिलते हो जो नास्तिक हैं, जिनकी किसी प्रकार के भौतिकवादी है, बहुत कम रुचि है। आपके वृंदावन धाम में तो लगभग 90% या 99% लोग जो आते हैं उनमें आध्यात्मिकता में रुचि है, पर विदेशों में जहां हमारे भक्त ग्रंथों को बांटते हैं वहां तो लोगों की बिल्कुल रुचि नहीं वैदिक संस्कृति में। वहां तो इतना ठंड है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उस वातावरण में भी हमारे भक्त क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। क्यों क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि परम भगवान ने कहा है सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, मैं प्रचार करता है। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये समाज की सबसे ऊंची सेवा है और हम सबको इस सेवा में जुड़ना चाहिए। तो ये जो ग्रंथों के वितरण का मैराथन है इसका मूल उद्देश्य है सबको भगवान के संदेश के साथ जुड़ना। और इन ग्रंथों का ऐसा प्रभाव है कि ये नहीं कि अगर आप इन ग्रंथ को बांटो तो लोग आज ही पढ़ेंगे। एक घटना बीती थी जहां की एक व्यक्ति ने ग्रंथ खोला जो कि 4 साल पहले उसकी मां ने खरीदा था। तो इन ग्रंथों का बड़ा गहरा प्रभाव है। अगर आज आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उत्साह के साथ ये ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ी है। और आपको अगर लगता है कि मैंने तो ऐसी सेवा कभी की नहीं, भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूं, उसे दूर कर देता हूं। तो आज के श्लोक में जो ब्राह्मण हैं ये स्थापित कर रहे हैं कि हर कार्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रशंसा। और अगर आपको शक हो कि क्या इस कार्य के द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा तो आप गुरु साधु शास्त्र का सहयोग ले सकते हो। अगर हम इस भाव से हर कार्य करेंगे तो बिना शंका के आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो हम सब का भाव होना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करें, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागें। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हम सब ये अंतर्राष्ट्र कृष्ण भाव धर्म की स्थापना क्यों की है, कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार बढ़ाने के लिए। तो आप सब इस सेवा में जुड़िए उत्साह के साथ और आप कृष्ण बलराम और प्रभुपाद जी की असीम कृपा प्राप्त करोगे। सब की दुनिया की अखी हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? बैठी 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 भाई अभी क्लास खत्म नहीं हुई। कोई प्रश्न है तो आप ऐसे कितने भक्त जुड़ोगे मैराथन में? अभी मैराथन के और माया का मैराथन पूरा साल रहता है कि नहीं, कि माया का मैराथन एक ही महीने रहता है, 1 महीना या 12 महीने, 7 दिन या 5 दिन, 24 घंटे। तो भक्तों में प्रचार का मैराथन भी 12 महीने रहना चाहिए, पर खास करके ये गीता जयंती के उपलक्ष। तो आप सब जुड़ोगे इस सेवा में पक्का? ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्णा। 9:30 बज गए।